पृष्ठ संख्या 186, सुनयात सेन के तीन जन सिद्धांत। तीन जन सिद्धांतों के मूलभूत विचार को सुन द्वारा 1905 ईस्वी में स्थापित थोंगमुंग हुयेई के घोषणा पत्र में ही स्पष्ट किया गया था। इस तरह चीन तीन सिद्धांतों के थोंगमुंग हुयेई के क्रांतिकारी दर्शन के रूप में स्वीकार किया। साथ ही सुनयात सेन का राजनीतिक और सामाजिक दर्शन मुख्य रूप से उनकी पश्चिमी शिक्षा और अनुभव से प्रभावित था। सुन ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उनके तीन सिद्धांत राष्ट्रपति लिंकन के विचारों से प्रभावित थे, जिनके अनुसार प्रजातंत्रीय सरकार जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। उन्होंने इसका अनुवाद इस तरह किया, मीन यू जनता जिसे चाहे, मीन छिहंग जनता जिसे शासित करे और मीन सियांग जनता जिसका उपभोग करे। इस तरह इन्हें मिलाकर उसका जो सम्मिलित अर्थ निकला उनके अनुसार मिल तजु राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय जनचेतना या जनजातीय एकता, मीन सुयेन जनतंत्र लोगों के अधिकार अथवा जनता के शासन करने से संबंधित अधिकार, और मीन संघ समाजवाद जनता की जीविका का आधार अथवा जनता की आर्थिक जिंदगी से संबंधित। इस तरह कुल मिलाकर यह तथ्य सामने आया कि सुन का प्रयास यह साबित करना था कि राज्य जनता के सभी अंगों का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी प्रत्येक कार्यप्रणाली में उन सभी की भागीदारी होना चाहिए। 1911 ईस्वी की क्रांति के दौरान और उसके बाद चीन को पांच प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनका अनुमान सुन यात-सेन को पहले से ही था। वे थी क, राष्ट्रवाद की समस्या जिसमें छिंग राजवंश को उखाड़ फेंकना और चीन को विदेशी तथा बाहरी ताकतों से बचाते हुए एकीकृत करना शामिल था। ख, विभिन्न चीनी समूहों द्वारा एक सामान्य राजनीतिक पहचान कायम करना जिससे एक समान राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सके। ग, गणतंत्र के निर्माण के लिए चीनी जनता को शिक्षित करना ताकि वह शासन प्रक्रिया में भाग ले सके। घ, चीन के विभिन्न जातीय समूहों और सुदूर क्षेत्रों को एक संगठित राजनीतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में कायम करना। अंग, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक संपन्नता का समान विभाजन ताकि चीनवासी व्यवस्था को समर्थन देते रहे। उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तीन जन सिद्धांतों को 1911 ईस्वी के सैनिक सरकार के क्रांतिकारी भाईचारे की घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी ब्रदरहुड के रूप में लागू करने का विचार एक निश्चित रूपरेखा के तहत रखा गया। इसके पीछे उनका उद्देश्य चीन को एक सशक्त एकीकृत राष्ट्र के रूप में विकसित करना था, जिसमें स्वतंत्र चुनाव, स्वशासन और साथ ही लंबे समय से प्रताड़ित उनके देशवासियों के लिए निश्चित आजीविका की व्यवस्था हो। शक्तिशाली एकीकृत राष्ट्र को राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। स्वतंत्र चुनाव और स्वशासन की स्थापना को प्रजातंत्र के तहत रखा जा सकता है और निश्चित आजीविका का प्रावधान समाजवाद के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि इनके तीन सिद्धांतों की प्रतिछाया हम राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और समाजवाद जैसे स्वरूपों में देख सकते हैं। तीन सिद्धांतों में पहला मीन तजुंग अथवा जन राष्ट्रीयता आमतौर पर राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत का एकमात्र सशक्त पहलू छिंग सहित सभी विरोधी शक्तियों को चीन से बाहर करना था। चीनी जनता द्वारा छिंग को उखाड़ फेंकने के पीछे सुन का उद्देश्य सामान्य चीनी जनता को मुक्ति दिलाना था। लेकिन कालांतर में इस सिद्धांत में एक दूसरा पहलू यह जुड़ गया था कि चीन की एकता और अखंडता भी अब इसी तरह का एक हिस्सा बन गई थी। उस समय चीन में चीनियों के अलावा अन्य कई प्रजातियां भी थीं, जिनमें छिंग, मंगोल, तिब्बती और विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे समूह शामिल थे। चीनी राष्ट्र की प्रकृति के बारे में सुन को प्रारंभ में अत्यंत सावधानी और नम्रता से काम लेना पड़ा। इस तथ्य के बारे में वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि चीन में एक संघीय सरकार हो जिसमें संबंधित राष्ट्रीयताओं मसलन तिब्बत, मंगोल और छिंग को स्वायत्तता प्राप्त होगी या फिर चीनी राज्य में पूर्ण शासी सरकार की स्थापना की जाए जो क्षेत्रीय और राजनीतिक रूप से प्रभुत्व संपन्न हो। उन्होंने यह महसूस किया कि चीन में पारंपरिक रूप में कबीलाई भावना थी, जहां राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं थी, पर सुन चीन में इस संकीर्णता की भावना को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि यदि चीन को जाति आधार पर स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों में बांटकर एक संघीय सरकार की स्थापना की गई तो भविष्य में चीन की कमजोरी और भी बढ़ेगी और विदेशी आक्रमणों के लिए रास्ता भी साफ हो रहेगा और विदेशी आक्रमणों के लिए रास्ता भी साफ रहेगा। अतः उन्होंने मुख्य रूप से चीन की एकता, अखंडता और संबद्धता पर जोर दिया। चीनी जनता की मुक्ति के लिए सुन ने दो मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया। पहला, उन्हें उनकी स्थिति से संबंधित खतरों का एहसास करा देना, और दूसरा, चीन को मजबूती के साथ एक शक्तिशाली और एकीकृत राज्य के रूप में परिवर्तित करना। एकीकरण में आने वाली समस्याओं जैसे रक्त संबंध, भाषा, धर्म और प्रथाएं आदि से लड़ने के लिए सुन ने चीनी जनता से स्थानीयता, क्षत्रियता आदि भावनाओं से अपने आप को अलग कर लेने की अपील की और उन्हें राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही सुन ने उन्हें इस बात से भी आगाह कराया कि वे चीनी राज्य के विध्वंस और चीनी जनता के उत्थान के प्रति सचेत रहें। इसके अलावा उनका विश्वास सैन्य शक्ति के महत्व, सांस्कृतिक परंपरा और नैतिक चरित्र के निर्माण में भी था, जिसका प्रचार उन्होंने जनता में अपनी राजनीतिक पहचान कायम करने के लिए साथ साथ किया। सुन ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद से संबंधित उनके सिद्धांत का तात्पर्य चीनी साम्राज्यवाद का विस्तार अथवा उपनिवेशवादी विस्तार से नहीं लेना चाहिए, जो बल और सैन्यवाद पर आधारित होते हैं। उन्होंने चाहा कि चीन के सभी नागरिकों को अपनी जाति और क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर अपने आप को मंगोल अथवा तिब्बती होने की भावना की अपेक्षा चीनी नागरिक महसूस करना चाहिए। उन्होंने अपने लोगों से चीन की समृद्धि के बारे में सोचने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि इसे अपने पड़ोसी देशों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। इस तरह सामान्य रूप से राष्ट्रवाद के सिद्धांत के द्वारा सुन ने चीन में राष्ट्रीयता और देशभक्ति के प्रचार प्रसार का कार्य किया और चीन को आर्थिक और क्षेत्रीय रूप से दुनिया की सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के चंगुल से बचाने का प्रयास किया। उन्होंने चीन की मुक्ति चीनी जनता के हाथों ही चाही। सुन ने उनकी भावनाओं को राष्ट्रीयता की परिधि में लाने के लिए साम्राज्यवादी हाथों में जकड़ी हुई चीनी जनता के दुख दर्द उनके सामने रखे और प्रोत्साहन के लिए उन्हें दुनिया के दूसरे हिस्सों की सफल क्रांतियों का हवाला दिया। सुन ने सर्वदेशीयता के सिद्धांत को भी चुनौती दी और चीनियों के लिए अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के विरुद्ध प्रचार भी किया। साथ ही उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से चीन की मदद करने की अपील भी की, ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि चीन अपने राष्ट्रीय उद्देश्य, स्वतंत्रता और चीनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृत संकल्प है। पृष्ठ संख्या 189। सुन यात्सेन का दूसरा सिद्धांत जन संप्रभुता भी लोकप्रिय अर्थ में प्रजातंत्र के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सुन चीन में एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते थे जो जनता के अधिकारों को चुनावी प्रक्रियाओं के द्वारा सुनिश्चित कर सके। लोकतंत्र से उनका तात्पर्य न सिर्फ जनता के अधिकारों से था जो अपने लिए एक सरकार का चयन कर सके, बल्कि चार अन्य विचारों से भी था। वे निम्नलिखित थे। पहला, पहलकदमी, इनिशिएटिव। इसके अनुसार जनता को उसके अपने लाभ के लिए किसी कानून का सूत्रपात करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, जनमत संग्रह, रिफरेंडम। इसका अर्थ था कि किसी कानून को लागू करने के बाद सरकार उस पर जनता की राय लेगी। तीसरा, निर्वाचन, इलेक्शन। इसका अर्थ था कि जनता को सरकार के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। चौथा, वापसी, रिकॉल। इसका तात्पर्य था कि अगर जनप्रतिनिधि अपने उद्देश्यों और कार्यों में असफल अथवा अक्षम रहे तो जनता को अपने प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार होगा। इस तरह सुन के विचार में अधिकारों को दिए जाने का यह सूत्र संविधान में जोड़ा जाना चाहिए था। यह संविधान के 5 विभागों पर आधारित होगा: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, परीक्षापत्ति और नियंत्रण। परीक्षा को एक भिन्न विभाग बनाया गया क्योंकि चीन में यह एक पारंपरिक संस्था थी और अब अधिकारियों को उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर चुना जाना था। सुन ने शोषित लोगों और प्रताड़ितों से संबंधित कमजोरियों को समाप्त करने पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारों से संबंधित गरीबी सीमा को समाप्त कर दिया। सुन ने एक ऐसे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की इच्छा व्यक्त की जिसमें देश के अधिकतर लोग भाग ले सके। दूसरी ओर उन्होंने कुछ लोगों को सुविधा लोभ का उपभोग करने के लिए एकाधिकार का खात्मा भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल समझा। उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने इस नई प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जो गणतंत्र के प्रति समर्पित थे। साथ ही अपने क्रांतिकारी सहयोगियों के लिए सुन ने उनके प्राकृतिक अधिकारों को भी सीमित करने का प्रयास किया। पृष्ठ संख्या 190। सुन का सरकार के पुनर्गठन का मत भी उनके तीन सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने देश के सभी नागरिकों को कन्फ्यूशियसवादी तरीके से तीन श्रेणियों में विभाजित किया। पहली श्रेणी में वह नेता थे जो पूर्व काल को समझ सकते थे और इस आधार पर भविष्य में जनता का मार्गदर्शन कर सकते थे। दूसरी श्रेणी में वे लोग थे जो जनता के बीच उनके नेताओं के बारे में जानकारी दे सकते थे। अंत में वैसे लोगों की श्रेणी थी जो कुछ नहीं जानते और जिनके पास किसी भी तरह की समझदारी नहीं होती, लेकिन जिनका कार्य अपने ऊपर के लोगों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना था। इसका तात्पर्य यह था कि खोजकर्ता और कानून बनाने वाले वर्ग को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए और जो राज्य के विधि विधानों को संचालित करे, जबकि संचालक से यह उम्मीद की जाती थी कि वह राष्ट्रीय हितों और उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुयायी वर्ग का कार्य करे। सुन ने शक्ति को क्षमता से भिन्न माना क्योंकि उनका विश्वास था कि यह जरूरी नहीं जिनके पास शक्ति है उनके पास आवश्यक रूप से क्षमता भी हो। उन्होंने प्रभुता संपन्न शक्ति और जनता के बीच अंतर पर जोर दिया और सरकार की सत्तासीन शक्ति को भी इससे अलग करते हुए कहा कि हालांकि जनता का सीधा संबंध प्रभुता संपन्न शक्ति से है, लेकिन उसके पास यह क्षमता नहीं है कि वह राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। उनके अनुसार कुछ चुने हुए लोग या विशिष्ट श्रेणी के लोग ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्षमता होती है और सरकार की कार्य संचालक पत्ती में वे लोग ही जिम्मेदार ढंग से अपना दायित्व निभा सकते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि देश में पूरी तरह से प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित करने से पहले देश में सैन्य शासन होना चाहिए जिसका लोगों पर पूरी तरह से राजनीतिक नियंत्रण हो, पर ऐसा कुछ अवधि तक ही होना चाहिए ताकि इस व्यवस्था में लोगों को वास्तविक प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाया जा सके।